ओम शांति। मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है और आज मार्गदर्शन में हमारे बीच उपस्थित हैं विभिन्न कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए ऐसे उद्यमी जो निरंतर कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आदिकाल से लेकर आज तक ऋषि परंपरा के जो भी साधक रहे हैं, जिन्होंने भी तपस्या की है, जिन्होंने भी आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि अपनी आत्मा से निरंतर संवाद करते हुए परमात्मा को अनुभूत किया है, सीधे सीधे परमात्मा का निर्देश का पालन किया है और हर तरह से अपने आप को साधना संपन्न करते हुए इतना सकारात्मक भाव से अपने को भर लिया है कि चारों तरफ उन्हें प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख दृष्टिगोचर होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी ऐसी ही एक सिद्ध साधिका और आत्मा परमात्मा के बीच निरंतर सेतु का काम करने वाली, जो अपने सद्भाव से, अपने सद्वचन से और अपने ज्ञान से पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर निरंतर व्यापक जनसमूह को लाभान्वित करती रहती हैं। उद्योग की कितनी आवश्यकता है, एक घर बनता है तो सिर्फ उसमें छड़, सीमेंट, बालू की ही जरूरत नहीं होती है, कांटे की भी जरूरत होती है, ईंट की भी जरूरत होती है और भी कई छोटी छोटी जरूरतें हैं। इसलिए समग्रता में, संपूर्णता में हमारे शरीर का जैसे निर्माण होता है तो इसमें एक कानी उंगली का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व एक बड़े पेट का है। इसलिए उद्योग बड़ा हो या छोटा हो, हर तरह से वह सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय योगदान से भरा हुआ होता है, लेकिन परेशानी व्यक्ति की हर जगह होती है। उन परेशानियों का समाधान इस मार्गदर्शन में आप ऐसे लोगों के बीच हैं, ऐसे उद्यमी के बीच हैं। आज ये उद्यमी अपनी निजी परेशानी के साथ ही साथ अपनी व्यावसायिक परेशानियों को लेकर भी कई अनसुलझे प्रश्नों के हल के लिए आपके पास उपस्थित हैं। सबसे पहले तो कुटीर उद्योग का महत्व और इनका जो योगदान है उस पर केंद्रित आपका एक विचार, आपका एक संवाद, फिर इनके प्रश्नों का समाधान।
ओम शांति। आप सभी का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो तो सारे समाज की आधारशिला है, क्योंकि निर्माण से संबंधित आपका कार्य है। किसी को भी कोई निर्माण करना हो तो आपकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना तो कोई कार्य ही नहीं होगा। तो जब हमें ये पता है कि हम हर नव निर्माण के आधारशिला हैं, फाउंडेशन है, और उससे भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात हमारे सामने आती है, जिस तरह से मिट्टी को ईंट के सांचे में ढालकर फिर क्या करते हैं, फिर पकाने के लिए उसको डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं उसको पकने के लिए। ये बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली बात है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जो अपने विचारों रूपी मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को जब व्यवहार की ईंट में पकने देते हैं, व्यवहार की भट्टी में, समाज की परिस्थितियों के बीच में जो उसको भेज देते हैं, डाल देते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों से लाभ लेते हुए वो मजबूत हो जाते हैं, जिसको अनुभव ही कहते हैं, पक जाते हैं। इसी तरह से अगर भगवान की याद को भी योग अग्नि कहा गया है, प्रभु प्रेम को भी योग अग्नि कहा गया है, जैसे एक सोनार सोने को अग्नि में डाल देता है और उसकी मिलावट को निकाल कर उसको शुद्ध रूप दे देता है, जिस तरह से ईंटों को भट्टी में डाल दिया जाता है और उसको पका दिया जाता है, इसी तरह हमारे जीवन में परिपक्वता आए, श्रेष्ठता आए और महानता आए, इसके लिए कौन सी भट्टी में बैठना पड़ेगा? योग भट्टी में। परमात्मा की याद की वो अग्नि प्रज्वलित करें, उनके योग की भट्टी को ऐसा प्रज्वलित करें कि उसके अंदर पक कर अनुभवी होकर हम जब कर्म क्षेत्र पर आएंगे तो कहीं बाधा नहीं लगेगी, कहीं समस्या नहीं दिखाई देगी। ऐसा लगेगा दुनिया में समस्या ही समस्या है और मेरे पास समाधान ही समाधान है, संसार के पास कारण ही कारण है और मेरे पास निवारण ही निवारण है। आप जानते हैं हर समस्या का निवारण आपको पता है, ये समस्या आई है क्या करना है, ये समस्या आई है क्या करना है, फिर भी हम समस्याओं को याद रखते हैं और समाधान को भूल जाते हैं। ये समस्या आई, ये समस्या आई, हम समझते हैं जिसको परमात्मा पर आस्था है, विश्वास है, उनके अनुभव है कि हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आई लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है क्या क्या समस्या आई। हमें एक ही बात याद है कि उस पर प्रभु ने हमें हर जगह पार उतार दिया। यही बात हमने याद रखी है कि हमको हर जगह पार उतार दिया, हर समस्या से निकलने का रास्ता सुझा दिया, किसी व्यक्ति को भेज दिया जिसने हमको मार्ग दिखा दिया, जिसने हमको कोई अच्छी सलाह दे दी। हमने समझा ये भी प्रभु का ही भेजा हुआ दूत है जिसने हमको रास्ता दिखाकर हमारी एक उलझन को आसान कर दिया। ये प्रभु प्रेम की निशानी है जिसको समस्या याद नहीं रहती, बाधाएं याद नहीं रहती, पार उतारा है यही याद रहता है। इसलिए हम समझते हैं ये है परिपक्व अवस्था की निशानी, जो पक गए हैं, मजबूत हो गए हैं, उनकी स्थिति की निशानी, उन्हें कोई बात बड़ी नहीं लगती। संसार है, बाधाएं तो आएंगी ही, हमारा काम क्या है? पार उतरना। हम समझते हैं अगर ऐसा प्रभु प्रेम का आधार पकड़ लें तो हर बात से पार होना आसान हो जाएगा।
मिट्टी, कोयला, आग, चिमनी, भट्टी, मजदूर और इन्हीं चीजों के सहयोग से निर्मित होता है इनका संसार, इनका उत्पादन। लेकिन जब ईंट तैयार हो जाती है तो बड़ी बड़ी इमारतों में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब में उसका सहयोग चाहिए, उसका आधार चाहिए, क्योंकि एक लिंज पुंज मिट्टी का लोदा आग में पककर जैसे ईंट के रूप में, पक्की ईंट के रूप में तब्दील हो जाता है। मनुष्य की साधना भी उसी तरह से होनी चाहिए। हम कुंदन की तरह धमक जाएं, हम इतने पक्के हो जाएं कि हम पर संग का रंग ऐसा चढ़े, श्रेष्ठ संग का रंग, कि दूसरा रंग उस पर चढ़े ही नहीं, कोई विचार हमें प्रभावित करे ही नहीं। दीदी ने सीधे सीधे आपके उद्योग को समादृत करते हुए आपकी महत्ता, लेकिन उन उद्योगों से भी आप क्या कुछ सीख सकते हैं और वहां के निर्माण से आप अपने व्यक्तित्व और जीवन का समग्र विकास और निर्माण कैसे कर सकते हैं, यह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आपकी समस्या, आपका प्रश्न। अपने नाम के साथ आप अपना प्रश्न करें।
नाम संत सिंह हुआ सर। हाँ दीदी, चिंता तो होती है,
चिंता परेशान।
जी जी जी,
चिंता में घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं
ना, अस्त व्यस्त करेंगे,
बच्चों पर बिगड़ जाते हैं।
हाँ, बच्चों पर तो,
या अपने ही इतना निराश हो जाते हैं।
जी जी,
चिंता से निराशा होती है और थोड़ा बच्चों पर भी क्रोध आ जाता है, चिंता मूल कारण है।
चिंता तब आती है जब व्यर्थ चिंतन चलता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जब कुछ अशुभ ना हो जाए, अशुभ विचार मन में आते हैं, तब चिंता होती है। बाकी अगर आप ये याद रखें, हम जो भी काम कर रहे हैं, बाधाएं तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, आप खड़े हैं उस सबको पार करने के लिए और आपको शुभ ही शुभ दिखाई देता है। अगर कोई कार्य आपने ठान लिया, बड़े से बड़ा कार्य, और आपके मन में आता है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आपका एक भाव स, सब हो जाएगा, ठीक होगा। ये भाव आपको चिंता लाने नहीं देगा। जब मन में आता है कहीं काम बिगड़ गया तो, ये जो मेरे काम करने वाले मुझे धोखा दे दिया तो, आज आए हैं कल नहीं आएंगे तो, अशुभ चिंतन चिंता का रूप ले लेता है और शुभ चिंतन पार उतार देता है। इसलिए चिंता चिता समान है, उससे तो पूर्ण रूप से छुटकारा पाना है। अशुभ चिंतन तो आएगा ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए। आपकी नजरें, आपकी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकी हैं। मेरा काम होगा नहीं, हुआ पड़ा है। ये अच्छा से अच्छा होना निश्चित है। आपके अंदर इतने निश्चय का भाव जागृत होगा तो बताइए चिंता होगी? अपने ही विचार चिंता में लाते हैं। समस्याएं तो जो बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाते हैं उनके सामने और बड़ी समस्याएं आती है। जो व्यक्ति जितना काम करता है उसके सामने उतनी समस्या आती है। जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं उनके सामने बड़ी बड़ी बातें आएंगी। समझ कर चलते हैं कि आएंगी ही, समझ कर चलते हैं। लेकिन हम अगर अपने उस परमात्मा को साथ लेकर खड़े हैं तो हमें हर बात आसानी से पार होने वाली नजर आती है। अपने पर विश्वास होता है, हो जाएगा, सब पार हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। अगर ये याद रहेगा तो हम समझते हैं कि आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे।
चिंता चिता समान है और हम सब जानते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, बाधाएं चिंताएं आती ही हैं आए। दीदी ने कहा सांसारिक परेशानियां आपको थोड़ा जड़ीभूत बना देती हैं, लेकिन अपने भीतर अगर शुभ विचार निरंतर आता रहे तो निश्चित रूप से आपको कोई चिंता नहीं सताएगी। हम लौटते हैं आपकी ओर और जानना चाहते हैं आपसे आपका प्रश्न।
हाँ दीदी, कोनो काम करते हैं उससे पहले सोच के करते हैं और में दिक्कत आती है तो दुख होता है, निराशाजनक
निराशा,
तरह तरह के मन में सोचना है,
संशय
आ जाते हैं।
वो तो देखिए हमेशा शुभ सोचें। आपने देखा है हर जगह लिखा रहता है स्वास्तिका बनाकर, हाँ आपका तो व्यापार है, स्वास्तिका बनाकर और क्या लिखते हैं, शुभ और लाभ लिखते हैं ना। आप जो भी काम कर रहे हैं लाभ के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा, शुभ और लाभ, एक हाथ में शुभ और एक हाथ में लाभ। तो आपको हमेशा शुभ सोचने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। अपने आप मन में शुभ विचार नहीं आते, अशुभ विचार जल्दी आते हैं। जैसे पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, उतारने के लिए तो मोटर नहीं लगानी पड़ती। शुभ चिंतन के लिए हमें थोड़ा सहयोग लेना है। क्या शुभ सोचें अपने लिए, अपना जो कार्य आपने शुरू किया है उसके लिए, जो कार्य में साथी है कार्यकर्ता है उनके लिए, रिजल्ट क्या होगी उसके लिए। हम लोग यहाँ क्लास कराते हैं कैसे शुभ चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकिंग हो, कल्याणकारी विचार अपने आप नहीं आएंगे, करने पड़ेंगे। लोग कहेंगे आपको, आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, आपने इतना बड़ा काम चालू कर लिया है, देखिए कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। लोग आपको अशुभ बातें याद कराएंगे, लेकिन आपके अंदर भरा रहे शुभ ही शुभ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ, महान ही महान। तो आपके विचारों का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर आएगा। अगर हम ये निश्चय कर लें मैं महान हूँ तो आपकी दृष्टि महान हो जाएगी, आपके विचार महान हो जाएंगे, आपका कर्म महान हो जाएगा। तो अपने आप को एक महान आत्मा समझकर श्रेष्ठ आत्मा समझकर और परमात्मा का भेजा हुआ हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है और वो उसने मुझे छोड़ नहीं दिया है, उसने यहाँ भेजकर मुझे छोड़ नहीं दिया है, मेरे हर कार्य पर उसकी नजर है, वो सहयोग देने को तैयार है, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहेंगे, याद ही नहीं करेंगे तो कैसे सहयोग मिलेगा, वो भी जरूरी है। इसलिए अपने आप मन से शुभ विचार करें और थोड़ा शुभ विचार कैसे करें इसकी ट्रेनिंग भी लें।
शुभ चिंतन और कल्याणकारी विचार का अभ्यास हमको निरंतर करना चाहिए, क्योंकि गिरना बड़ा आसान है, सहज और सरल भी है, चढ़ने में थोड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, लेकिन चढ़ जाने के बाद जो अनुभूत होता है वह अनकहा होता है। इसलिए मन को साधने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा अपने प्रति संयत और सावधान होने की जरूरत है। दीदी ने बताया, हम आपसे आपका प्रश्न जानना चाहते हैं।
ओम शांति। अगर किसी आदमी के मन में निगेटिव विचार ही हमेशा आता हो तो उसका क्या समाधान?
आजकल तो सबके मन में नेगेटिव विचार ही आते हैं, ऐसा है ना? तो नेगेटिव को मिटाना है और पॉजिटिव थिंकिंग करना है। हमेशा हमें ये सोचना है कि हम जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं ये कार्य होके रहेगा। ये अगर आपके मन में ना आए तो भी जगाइए, क्रिएट करिए इसको शुभ विचार। जो कार्य आपके सामने है ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, आपने यही कार्य करने के लिए सिलेक्ट किया है, मुझे ये काम करना है, इसका मतलब है आपके द्वारा ये संपन्न होना निश्चित है, आपके ही हाथ से होगा, आपके अंदर उसकी विशेषता है, तब आपको उस कार्य करने की रुचि हुई है। हर व्यक्ति को हर काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, आप जिस कार्य को हाथ लगाया है ये कार्य होके रहेगा, और ऐसे शुभ विचार अपने मन में उत्पन्न करने से, इतना ही नहीं आपके साथ जो काम करने वाले हैं उन पर भी विश्वास, निश्चय बहुत बड़ी शक्ति है। कहते जहां निश्चय है वहां विजय है, निश्चय है वहां विजय निश्चित है। अपने में संशय ना करें, काम शुरू तो कर लिया है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये संशय कमजोर कर देगा। हम सबको संतुष्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो अपने ही अपने बारे में अगर संशय उत्पन्न होगा तो शक्ति घट जाएगी। अपने बारे में श्रेष्ठ विचार, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, वो सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि रचने वाला है, मेरे द्वारा नव निर्माण का कार्य करवा रहा है, उसका ही कार्य मैं कर रहा हूं। अगर अपने कार्य में परमात्मा की याद को मिला दें, साथ ले लें, तो विचार हमारे शुभ हो सकते हैं। और राजयोग एक ऐसा योग है जो हमारे को शुभ चिंतन की प्रेरणा देता है। राजयोग का अर्थ है स्वयं पर राज्य करने की शक्ति। स्वयं पर राज्य करने का अर्थ क्या है? हम शुभ सोचें, हमारा हर विचार शुभ, हर विचार कल्याणकारी, हर विचार श्रेष्ठ, हर विचार में निश्चय भरा हुआ हो, हमारे ही विचारों का प्रभाव हमारे उद्योग पर होगा, हमारे ही विचारों का प्रभाव हर व्यक्ति पर होगा जो वहां काम कर रहे हैं, तो अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति को लाना, इसके लिए परमात्मा में भी विश्वास चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है और मुझे कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से मिलेगी। ऐसा विश्वास रख के कार्य करेंगे तो आप हमेशा शुभ चिंतन कर सकेंगे।
संशय पराजय देता है तो निश्चय विजय हमें दृढ़ता के साथ, सकारात्मकता के साथ, संकल्प के साथ, अगर किसी काम करने की शक्ति मिलती है तो उस काम में हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। भीतर आपकी अकूत शक्ति छिपी हुई है, उसे समझदारी से समझने की जरूरत है और अपना सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। दीदी, जिस तरह से सहज सरल ढंग से आपके कठिन सवालों का उत्तर दे रही हैं, यह एक लंबे अभ्यास के बाद, एक साधना के उपरांत यह दिव्यता और यह ज्योति उपलब्ध होती है। आप भी अगर अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी एक शांति, एक दिव्यता, एक ज्योति अवश्य ही उपलब्ध होगी और तब हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखलाई पड़ेगी, क्योंकि उसका सोता आपके अंतर मन में होता है। हम आपसे आपका सवाल जानना चाहते हैं।
ओम शांति। ये ओम शांति क्या है?
ओम का अर्थ ही है, ईश्वर के लिए भी कहा गया है ओम ओंकार, और ओम का अर्थ है अहम। ईश्वर ने भी अपने लिए कहा ओम, हम भी अपने लिए कहते हैं ओम। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? अहम आत्मा अर्थात ओम। मेरा स्वरूप क्या है? शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप हूं। अगर हम हमेशा अपने आप को आत्मा निश्चय करें, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आंखें है ना, देखती नहीं है, मैं आंखों से देखता हूं। मैं अर्थात मैं आत्मा जो चेतन है, अविनाशी है, अमर है, इस शरीर के अंदर बैठकर सोच रही है, देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, कर्म करती है, इच्छा करती है, कार्य करती है। ये शक्ति किसके अंदर है? मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। जब अपने ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है, ये माटी का पुतला है शरीर, मैं इसमें बैठकर कार्य कर रहा हूं, ये रथ है, मैं आत्मा रथवान हूं, ये मोटर है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, ये एक मकान है, मैं इसका प्रयोग करता हूं, इसमें रहता हूं। तो अपने आप को आत्मा निश्चय करना, ये रियल है। काया झूठी, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार कहते हैं ना, क्योंकि अगर अपना एक साल दो साल की उम्र का फोटो देखें, आज का फोटो देखें, लगता ही नहीं कि मेरा फोटो है। जो रूप बदलता रहता है लोग कहते हैं झूठा है ना, ये संसार झूठा है। एक दिन आएगा आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा झूठा संसार, ये झूठी काया, इसका सब दिन रूप एक जैसा नहीं रहता और एक दिन रहेगा ही नहीं। और आत्मा सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये शरीर नहीं था, मैं था, ये जब नहीं रहेगा मैं रहूंगा, मैं आत्मा हूं। मेरा गुण क्या है? शांति। मेरा गुण क्या है? प्रेम, शक्ति। निश्चय करना है मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। अगर ये हम याद करते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा हम जो कर्म कर रहे हैं वो इतना शक्तिशाली कर्म होगा। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते ना कहकर ओम शांति कहते हैं, अर्थात याद दिलाते हैं कि आप भी आत्मा हो, आप भी शांत स्वरूप हो। किसी कार्य को शुरू करते हैं तो भी ओम शांति कहते हैं, और जब किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो भी ओम शांति कहते हैं, अर्थात उस कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं सारे दिन में जब भी आप किसी से मिलो कम से कम अशांत जगत में बार बार शांति तो बोलें, ठीक है, किसी से भी मिले ओम शांति तो बोलें। हर व्यक्ति अशांत है, हमारे मुख से तो शांति 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 निकलता रहे और एक शांति का वाइब्रेशन वातावरण बनता रहे।
ओम शांति महज एक सामान्य अभिवादन नहीं, एक महाअभिवादन है जिसके माध्यम से परमात्मा और आत्मा दोनों की अंतर्निहित खुशबू को हम महसूस करते हैं और दोनों शांत चित्तता में ही अपनी उपलब्धता को उत्कर्ष भी देते हैं। दीदी ने ओम शांति, और जैसे ही हम ओम शांति करते हैं हम इसमें कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोर नहीं, बल्कि एक सुकून और राहत, और लगता है कि हमारे भीतर जो एक चेतन शक्ति है वही प्रतिध्वनित हो रही है और बाहर वालों का भी संस्पर्श करके उसके भीतर भी जागृति या शक्ति ला रही है। आज आपके सवालों का जवाब वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी ने दिया। उस जवाब के पीछे ज्ञान का वैभव है, उसकी श्री संपन्नता है। दीदी आपने मार्गदर्शन में छोटी छोटी समस्याओं का, लेकिन वे उद्योग के लिए गंभीर समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, आपने जिस सहजता के साथ अगर उसका प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें, तो आने वाले समय में इनकी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। और आपने अपने प्रश्नों का जो हल प्राप्त किया, अभ्यास कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में भी अवश्य सफलता मिलेगी। आप आए, दीदी को बहुत आभार, और आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।